पेंशन थी 2019 भी पूरा हो रहा अभी जी, 2020 आ रहा है 2030। तो आज बाबा ने सबसे ज्यादा पद्मा पद्म भाग्यशाली कौन बच्चे हैं सरेंडर कर देते हैं, और जिनका भगवान स्वीकार कर लेता है, जो सबको सरेंडर कर देते हैं और भगवान स्वीकार करता है, वो पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे हैं। इतने खुश नसीब है हम सब आत्माएं कि सारे कल्प में केवल हम सिलेक्टेड सोल है, भगवान के द्वारा चुने हुए रत्न हैं, जिसने हम सबको विश्व परिवर्तन के लिए चुना हुआ है। उसकी हमारे पास कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी आकांक्षाएं हैं, हमारे प्रति कितना उसको फेथ है, विश्वास है। ये बच्चे जो है विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त है। भगवान ने हम सबके अंदर कितनी सारी विशेषताएं देखी होंगी कि पूरे विश्व को परिवर्तन करने की क्षमता इन बच्चों में है, योग्यता है। तभी तो एक एक आत्मा को सुन सुनकर एक बगीचे में इकट्ठा किया है, कहां कहां से सब एकत्रित हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में छोटे छोटे देशों को बाबा याद कैसे करते हैं और कैसे सबकी विशेषताओं का ध्यान करते हैं। तो हम सभी क्या जो बाबा हम सबके ऊपर जिस नजर से हमको देखते हैं, क्या उसी नजर से हम स्वयं अपने आप को देखते हैं, क्या हम सचमुच उतने पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं? वो फीलिंग आती है, वो अनुभव होता है, उस अनुभूति में हम रहते हैं कि भगवान ने हमारा जीवन स्वीकार कर लिया, कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना दिया उसने। कल भी बाबा ने कहा था ना मुरली में, परसों की मुरली में, कि अगर शिव बाबा ब्रह्मा भगवान में आते तो ये भी कोड़ी तुल्य था, ऐसे तो हम तुम बच्चे भी ऐसे थे। तो भगवान के आने से हम सबका भाग्य उदय हो गया, जो भाग्य अंधकार में जा रहा था दुर्भाग्यशाली, बताया ना बाबा ने आज तुम बच्चे दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। कितने दुर्भाग्यशाली बन गए थे, तो बाबा ने हम सबको आज कितना सौभाग्यशाली बनाया। उस सौभाग्य की स्मृति, उस भाग्य का नशा, वो सारे दिन में हमें कितना रहता है, हम स्वयं ही अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं। अगर वो स्मृति है तो मन की स्थिति भी हमारी शक्तिशाली रहेगी, मंग से बना रहेगा, क्योंकि सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। जब जब हम भूल जाते हैं तो माया आक्रमण करती है, विस्मृत हो जाते हैं तो माया अनेक प्रकार के विभिन्न रूपों से हमारे ऊपर हमला करती है। आज भी बाबा ने कहा ना, तुम बच्चे भूल जाते हो तो क्या करती माया, खा जाती है इसको, पहले भोजन को खा के ब्रह्म को खा जाती है। हाँ जी, बलवान बन जाती है, बनना बनने हम बलवान के लिए बैठे थे और बन हो गई, बाजी कोई मार गया आगे। इस युद्ध के मैदान में माया के साथ हमारा मुकाबला है, और हमारे साथ कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ है। लेकिन कभी कभी बच्चे माया को साथी बना लेते हैं तो माया बलवान बन जाती है, और क्या करती है, वो सारा भोजन खा जाती है। तो आज बाबा ने भोजन के प्रति कितना महत्व बताया, भोजन के प्रति क्या करना है, याद में करना है, कैसे याद करना है। अब बाबा ने कितने चिरूर बन की, हम उसकी सजन है, वो हमारी सजनी है, ऐसे हम उसकी सजनी है, वो हमारा साजन है ना, नहीं बनता, तो हम उसकी सजनी है ना। तो साजन को बिना भोग लगाए अगर हम खाएंगे, जैसे संसार में भी देखा जाता है, जो माताएं होती हैं जब तक उनका परमेश्वर नहीं आता तब तक वो भोजन नहीं करती है ना, वेट करती है बोले राज की कितनी बच जाए, तो वो तो अभी स्वयं पतियों का पति आया हुआ है। तो अगर भोजन हम उसकी अनुपस्थिति में करते हैं, बिना उसको भोग लगाए करते हैं, तो वो सारा माया खा जाती है। और ये बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है। ये भी कर्म साधना नहीं है। ये भोजन पर देखा जाता है, करते तो है, हम भी बातचीत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब जब हम गति हमारे मुख में जा रही है, उसमें हमारी स्मृति कौन सी है? पूरा साइलेंस में रहना, ये भी बहुत अटेंशन रख के रहना चाहिए। जो रहता है वो तो बस बुद्धि का पात्र है, और जो नहीं रहते हैं ऐसे रहने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे अभी आने वाले साल में हमें क्या करना है। वैसे तो सब करते ही हैं, लेकिन ये कि मन बुद्धि को बिजी रखने के लिए बाबा बार बार रिवाइज कराते हैं। नहीं तो मुरलियां तो कितने सालों से चल रही हैं, सुन नहीं रहे, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए बाबा बार बार रिवाइज कराते हैं, उनको याद कराते हैं, भूल जाते हैं बच्चे। तो कुछ बातों को वो भी हम चर्चा करेंगे, सारे दिन में हम किन किन बातों पर अटेंशन रखें ताकि हमारा मन बुद्धि क्लियर रहे। आय का स्लोगन था ना, क्या स्लोगन था? मन बुद्धि क्लियर कैसे होगा? बाप के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने वाले, क्लियर कैच करने के लिए क्या करो? अपने मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो। तो सारा जो ज्ञान है ना, ड्रिल की माफिक है। जैसे शारीरिक ड्रिल करते हैं तो कितने तंदुरुस्त रहते हैं, जीवन में उमंग उत्साह बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, जीवन जीने का मजा आता है। उसी तरह ज्ञान भी एक ड्रिल की तरह है। जैसे सारे जो हम सूर्य मुरली सुनते हैं, तो मुरली में भी क्या है? अभी यहाँ अभी भी सूक्ष्म वतन, अभी भी स्थूल वतन, अभी भी परम धाम, अभी भी सत्ययुग, अभी भी कलयुग, अभी भी भक्ति मार्ग, अभी भी ज्ञान मार्ग, अभी अभी देवता है, अभी भी असुर है, अभी अभी वो साधु सन्यासी है, अभी तुम बच्चे हो। तो सारा बुद्धि का ड्रिल चल रहा है। तो जो धारणा की बातें हैं वो सहज तुरंत नहीं आती, टाइम लगता है। हाँ, अगर हमारी दृढ़ता उतनी है, उतना हमारे में दृढ़ प्रतिज्ञा है, प्रण करते हैं अपने आप से, तो वो भी संभव है। लेकिन लंबे समय से हमको अभ्यास और भी बातों के पड़े हुए हैं, ना चाहती बुद्धि चली जाती है। भले कर्म से नहीं जाते हैं, लेकिन इस मन के अंदर बहुत सारे संसार हैं जहां हमारी बुद्धि चली जाती है बार बार, उसको पकड़ के लाना पड़ता है, फिर पकड़ के लाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कर्तव्य अभ्यास के जन्मते उस जान। तो लंबे समय का अभ्यास करने की एक साधना है ये, क्योंकि ब्राह्मण जीवन साधारण जीवन नहीं है, बहुत ऊंच जीवन है ये। बहुत जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन का हमको महत्व पता चलता है कि ब्राह्मण जीवन कितना ऊंचा है। भगवान के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा को मुख पहुंचा वाली। तो भगवान की जो स्वभाव संस्कार है, वो गुण है, वो हम सब आत्माओं है ये हैं। तो भगवान का दृष्टिकोण कितना ऊंचा है, हम उस दृष्टिकोण तक कहां पहुंच पाए हैं, उसके कर्तव्य कितने ऊंचे हैं, उसके समय किन बातों में जा रहा है, तो उस पर हम कंट्रास्ट अपने आप साथ तुलना करेंगे। हम अभी तक कहां पर हैं, वो कहां पर है, और हमको कहां पर पहुंचना है। तो वहां पर पहुंचने के लिए बहुत सारी बातों का अटेंशन रखने की जरूरत है, बहुत सारे परहेज रखने की जरूरत है। तो ये हम धीरे धीरे इस ब्राह्मण जीवन के महत्व का अनुभव कर पाएंगे। ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। तो देवताओं से भी देखते हैं कभी सुख और शांति में रहते, लेकिन ये हम आरा अचिंद्रिय सुख है, परमात्मा प्यार का सुख मिलता है। तो कुछ एक धारणाएं हैं जो हम अपने जीवन में धारणाओं के लिए निरंतर जागरूकता चाहिए, तो ये हम उनको धारण कर पाते हैं। विस्मृत हो जाते हैं, है ना। भोजन की धारणा एक ही, अगर हम इस धारणा को पक्का कर लें तो भी शायद बहुत कुछ हमारे जीवन में महान परिवर्तन हो जाए। लेकिन चलते चलते हम ढीले हो जाते हैं, भले चार्ट तो लिखते हैं, लेकिन अंदर का जो हमारा परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ तक हो पाता है, ये तो हम खुद ही अपने आप को जान सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो हम भूल जाते हैं, और भूलने के कारण ही माया का गोला लग जाता है। बाबा रोज हमारे ऊपर उपकार करते हैं, फिर नए सिरे से कुछ बात चालू कराते हैं, फिर मीठे बच्चे, फिर प्रश्नोत्तर, फिर वरदान, फिर मुरली, फिर सारा दिन बीतता है, फिर अगले दिन फिर पालना होती है नए सिरे से। तो बाबा हमारी रोज कितनी पालना करते हैं, उस पालना का हम कितना अनुभव कर पा रहे हैं, तो हमें स्वयं के विपरीत जांच करनी है। और आज की मुरली में और क्या कहा बाबा ने? एक तो भजन का कहा, साधन सजने की बात कही, और क्या कहा? पद्म भाग्यशाली वो बच्चे जो भगवान जिसका स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार क्यों करते हैं? ताकि इन बच्चों का ममत्व मिट जाए। जो हमारा ममत्व संसार की चीजों में, संबंधों में, लौकिक संबंधों में, व्यक्तियों में है, वस्तुओं में है, पड़ोसियों से है, तो उस ममत्व से हमारा ममत्व मिट जाए, वो हमारे हाथ से छूट जाए और बाबा से हमारा जुड़ जाए, नाता अच्छी नाता जुड़ जाए, तो बाबा हमारे ऊपर कितना उपकार करते हैं। और क्या कहा बाबा ने आज? का दुराना जरूरी है, नहीं तो खाली आत्मा समझ बाप को याद करना है, ये भी नहीं होगा। शुभ चिंतन, हाँ आज के भगवान की बात थी कि संसार की आत्माएं क्या कर रही हैं? चिंता में हैं। और तुम कौन सी मणिया हो? शुभ चिंतक मणिया हो, तो शुभ चिंतक मणि बनकर उनकी चिंताओं को भरना है ना। और एग्जांपल दिया है, कौन सा एग्जांपल दिया? ये तो हाँ सूर्य का एग्जांपल दिया। जैसे सूर्य क्या करता है? सारे संसार के अंधकार को मिटा देता है, कीटाणु को भस्म कर देता है। और जैसे सूर्योदय होता है तो क्या होता है? आजकल सूर्योदय कितना अच्छा लगता है, धूप आती है, इंतजार में रहते हैं, उसकी एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलती है, खुशी होती है, उजाला होता है, अंधकार भाग जाता है, जानवर चले जाते हैं जंगल में। तो ज्ञान सूर्योदय हुआ है, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। जैसे सूर्य से किरण निरंतर निकलकर संसार में फैलती हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपनी निरंतर स्मृति में रहो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और ये परम कर्तव्य है, अव्यक्त वाणी में है, तुम बच्चों का एकमात्र कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें लेकर सारे संसार की आत्माओं को देना, ये तुम बच्चों का एकमात्र कर्तव्य है। तो अगर हम इस कर्तव्य में बिजी रहेंगे तो संसार की चिंताओं को दूर कर सकेंगे। दयानंद बाबा ने वो सूर्य और तुम ऐसे संसार की आत्मा अनुभव करने लगी हैं अभी कि कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल लाइट है, आकर्षण हो रही है, तो इस पुरुषार्थ को हमको बढ़ाना है, तो इसके लिए शुभ चिंतक मणि बनना है। और हर आत्मा के प्रति शुभकामना, शुभ भावना, शुभ चिंतक बनकर रहना, ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। दूसरी आत्मा को ठीक है, लेकिन क्या हम अपने प्रति भी शुभ चिंतक रहते हैं? नहीं, अपने आप के प्रति भी तो दुर्भावनाएं बहुत सारी होती है ना चाहते हुए उसमें फंस जाते हैं जाके, शुभ भावना शुभ कामना कहाँ की कहाँ रह जाती है। तो स्वयं के प्रति हमारी शुभ चिंतक स्थिति कहाँ तक बनी है, वो भी हमें स्वयं को जांच करना है। और क्या कहा बाबा ने आज? बुद्धि क्लीन एंड क्लियर करनी, हाँ हाँ, डायरेक्शन जो है वो अगर क्लियर, उनका टचिंग चाहिए, कैच करना है उनको, तो अपने मन बुद्धि की लाइन को भी क्लियर रखो। और क्या कहा बाबा ने? हाँ ये बादल आज नहीं तो कल दिखेंगे ये बादल, हाँ उसके बीच में भी ज्ञान के बादल, ज्ञान की वर्षा होती रहनी चाहिए। हाँ और क्या कहा? हाँ बाबा ने कहा इसकी पहले लाइन थी कि तुम बच्चे हल्की होती चलो, है ना, हल्की से चलो, क्यों? क्योंकि आत्मा रफ्तार से भी तीखी है, और इससे चलने से क्या फायदा होगा ये भी बताया था, क्या फायदा होगा? थकेंगे नहीं, कहां भी चले जाओ और देवा निश्चित रहेगी। तुमको ना हल्का होकर जाना है, बोझ क्यों रहती है? बहुत सारी बातों को हमने पकड़ के रखा हुआ है और वो बातें मन को भारी करती जाती है, छोड़ देना है। जो भी हमारे 30 दिन से पूर्व हुआ भूल जाने का, उसको कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया हो गया। उनसे हम यही सीख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमने भूल की है जो हमको नहीं करनी चाहिए, नहीं। और उसको ना भगवान करेगा कुछ, नाम लास्ट लाइफ तो भूलनी है, लेकिन ब्राह्मण लाइफ जिस बीतरा ना भूल जानेगा उसको। हाँ वो अच्छे अच्छे ना वो भी याद रखने हैं, जिसमें बाबा ने हम सबको एक सेकंड में श्री विद्याचवान का अनुभव किया था, बाबा ने एकदम जैसे चार्जिंग कर दिया था, एक सेकंड में बॉडी से हम डिटैच हो गए थे, या हमारे मन बुद्धि का ताला खुल गया था, नई नई टीचिंग हुई थी, वो सारे एक्सपीरियंस हमको अनुभव करने, या कोई ऐसी समस्या आई थी बाबा ने एक सेकंड में समस्या से बाहर निकाल दिया, वो सारे अनुभव याद करने, बाकी सबको भूल जाने के। इसलिए डेली फुल स्टॉप लगाने की हमको आदत होनी चाहिए। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो वो लाइन आगे चलती रहेगी, लिखते रहेंगे पूर्ण विराम को देना। इसलिए रोज रात को सोने से पहले बाबा का चार्ट रखो, फुल स्टॉप। तो और क्या बोला बाबा ने आज? विचार सागर मंथन करना है। हाँ, क्योंकि अगर मन बुद्धि को काम नहीं देगी तो विचार सागर मंथन तो वैसे हर व्यक्ति करता है, लेकिन वो दूसरा विचार सागर मंथन होता है। करते तो सभी है, लेकिन दूसरा जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं। तो केवल परिवर्तन नहीं करना, हमको क्या करना है क्या नहीं करना। तो विचार सागर मंथन भी तब होगा जब मुरली के कुछ पॉइंट हमारी बुद्धि में होंगे। और क्या करना है, और क्या बताया मुरली में? हाँ, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की अपनी अपनी रीति के समय है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी जब रज प्रधान भक्ति तब भी उनको ताकत मिलती है, क्योंकि उस समय श्रद्धा थी, अभी भक्ति तमो प्रधान हो गई है। हाँ, गरीब निवास जिसको कहते हैं, उसमें गरीबों को ज्यादा मिलता है, उसको ज्यादा अनुभव होता है। और क्या कहा, भक्ति को थोड़ा दुड़ाएंगे ना तो जागृत रहेंगे, नहीं तो सुस्ती का प्रकोप हमारे पछताया रहता हमेशा, नींद खींचती है, आ जाओ मेरी गोदी में मेरे लाडलो, पहले से बहुत सारे प्यार है ना उससे। हाँ, क्यों नहीं मिलता उनको साहूकारों को? हाँ, उनको धन का नशा रहता है, उसी में लगे रहते हैं, इसलिए उनको इतना नहीं मिल पाता है। और क्या कहा बाप ने जी? और भी बहुत सारी बातें थी, तीन जानवरों को याद किया, कौन से जानवरों का? और भोजन में किस चीज को याद किया, और कौन से देशों को याद किया? खिचड़ी, खिचड़ी मिठाई, आम। तो ये चीजें हमको, ये ज्ञान की खिचड़ी खानी है डेली, ज्ञान की चीज खानी, ज्ञान की मिठाई खानी है। और कौन से देशों को याद किया बाबा ने आज? ओ, कल था जर्मन, आज दूसरी कंट्री में ले गई। आज यूरोप और चीन को याद किया, क्यों याद किया बाबा ने? क्या होंगे वो भी, वो यूरोप और चीन तो होंगे, लेकिन नाम वो नहीं होंगे। हाँ, वहां सब देवी देवता ही होंगे, सब देवी देवताओं के घर होगा, वो पिकनिक स्पॉट होंगे। और कौन से तीन जानवरों को याद किया? ऐसे अलग अलग वर्ड याद करने, कौन से देशों को याद किया, किस संबंध से याद किया, कौन से जानवरों को याद किया, मुरली सारी घूमती है, इन्हीं कौन कौन से पात्र है मुरली में, जैसे साधन को याद किया, बाप को याद किया, बच्चे को, कुमारियों को याद किया, कुमारियों को क्या याद किया? हाँ, सुनाई होती है तो ध्यान कहाँ जाता है, वहीं जाता है ना। और कुमारियों को सहूलियत बहुत मिलती है, सेंटर में चली जाती है तो भाई हो जाती है भगवान समान। और तीन जानवर रहेगी फिर भी, कौन से? एक तो बाबा ने भ्रमरी को याद किया, ठीक है ना, भ्रमरी को याद किया, क्या करती है? भूमो करती है। तो हमको भी भूमो करना है, अपने आप से अपने ऊपर भूमो करते रहना है ना, और दूसरों के ऊपर भी करते रहना है। और दूसरे किसको याद किया? कछुओं को याद किया। और तीसरा, तीसरा था कौन सा? भक्ति मार्ग में मैं कालों का काल हूँ तो सब कुछ ले जाता हूँ। हाँ, मछली के अर्थात सभी मछली नहीं जानते, मच्छर से दृश्य ले जाता हूँ, मच्छर से दृश्य ये है। एक और बात, कौन सी स्टेट को याद किया आज बाबा ने? भारत की कौन सी स्टेट को याद किया? ठीक हो, नहीं गुजरात से नहीं याद किया, कर्नाटक नहीं, दिल्ली भी नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं, किसको याद किया? बॉम्बे नहीं, गोवा से शुरू होता है, तो गोवा भी नहीं, गोवा तो कभी नहीं आता मुरली, गोवा से शुरू होता है, बताओ, गोवा से नहीं, गोवा से शुरू होता है, गोवा से मुझे बताओ अभी, बंगाल, बंगाल को याद किया, क्यों किया बंगाल को याद? हाँ, बोलते हैं राम राम कहो, जब मनुष्य मरने पर होता है तो बोलते राम राम कहो, और बंगाल में रीति रस्म है, ले जाते हैं वहां घाट पर, बोले हरि बोल और डुबो देते हैं, तो बंगाल को याद किया। और किसको याद किया? साधु सन्यासियों के, साधु सन्यासी, सन्यासी बाबा के मामा के सन्यासी भी इन बातों को जानते नहीं है जो तुम जानते इन बातों को जानते हो। तो ये सारे अलग अलग पात्र होते हैं, किस किस बाबा ने याद किया अगर वो भी हम याद रखें तो धीरे धीरे वो बातें आ जाएगी, कौन सी स्टेट, कौन से जानवरों को या कौन से संबंध को, टीचर और स्टूडेंट का संबंध भी बताया बाबा ने, टीचर और स्टूडेंट के संबंध में क्या बताया था। हाँ, पढ़ाई पढ़ते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, लेकिन वो है अल्पकाल का, और बच्चे सदाकाल के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, 21 जन्मों के लिए, तो ये भी टीचर और स्टूडेंट का संबंध। तो मुरली ऐसे अलग अलग तरीके से होती है, लंबे समय के बाद धीरे धीरे उसको शुरू करते हैं तो पकड़ में आती है, नहीं तो निकल जाती है मुरली, बहुत मान ही रह जाती है। हाँ, सीधी पढ़ लेते ना, इसलिए ये घाटा हो जाता है बीच बीच में, घाटे और नुकसान की बात बीच में आ रही, घाटा और नुकसान तो एक ही बात है, फायदा किसको होता है और घाटा किसको होता है, तो उसकी भी बात थी। तो अभी हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास लाइफ है, जो हमारे पास टाइम है, तो हमको सारे दिन में क्या क्या करना है, सवेरे से लेकर शाम तक जो भी बातें देखो तो हम उन बातों को करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार इन बातों को रिवाइज करना अति अनिवार्य है। अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो उमंग उत्साह नहीं बढ़ता, आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ती है, फिर वहीं के वहीं हम अपने आप को खड़ा अनुभव करते हैं। तो हम जिस बातें देखेंगे कि जो हमको रोज बार बार करनी है, वो करते तो हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर करनी है, फिर हम भी ऐसे होता है, वो भी हमने जो देखा आज ही शाम को देखते हैं, करते भी हैं लेकिन कभी कभी भूल भी जाती है, इसलिए बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि सभी हम सभी पुरुषार्थी हैं और एक दो के सहयोग से हमको आगे बढ़ना है, अकेला कोई आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है, सर्व की दुआएं लेना बहुत जरूरी है, सर्व की शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं हमारे पक्ष होगी तो हमारे प्रसाद को पंख लग जाएंगे, अगर हम अकेले करते रहेंगे तो नहीं होगा, इसलिए सबको एक दो को बाबा की आपस में ज्ञान चर्चा करो, एक दो को याद करा दे, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का भाषा याद है, पहले बहुत सारी यज्ञ में जो होता था शुरुआत में ये सारी बुकें चर्चा करते थे, डिस्कशन होती थी, एक दूसरे को याद कराते थे, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है और ये परिवर्तन भी फायदेमंद ही है, लेकिन हमको क्या करना है ये हमको देखना है। बाबा ने उस दिन कहा ना मुरली में, दूसरा क्या करा तुम्हारा क्या देता है, लेकिन हमको क्या करना है ये हमको देखना है, तो हम बीस बातें देखेंगे क्या क्या करना है। तो जो हम रोज करते हैं सबसे पहले तो अमृत वेला है ना, अमृत वेला हमको मिस नहीं करना, भले कुछ भी हो, भले बीमारी भी है तो भी, भले अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो क्या पर लेट लेकिन बाबा को बड़े प्यार से याद करना, अगर बीमारी की व्यवस्था है तो, अगर नहीं है तो उठ के क्यों छोड़ देना, क्योंकि वहां नींद के वाइब्रेशन होते हैं। हाँ, क्योंकि घरों में इतनी जगह नहीं भी होती है तो उठ के चलती फिरती याद करो, क्योंकि उस खटिया पर बैठ के करेंगे तो वहां नींद के वाइब्रेशन होते हैं और खींचेंगे, वो दो मिनट अच्छा रहेगा लेकिन फिर तीसरे मिनट में शांति हो जाएगी, तो उस स्थान को छोड़ना अति अनिवार्य है ना, घरों में कई शहरों में जगह नहीं होती है तो छत पर चले जाओ, ऊपर नीचे पूजा करो या कुछ कान में लगा दो, तो अमृत वेला हमको मिस नहीं करना कभी, और अमृत वेला बड़े प्यार से करना है, मजबूरी से नहीं है, उसके प्यार का अनुभव करना है। तो पहली बात है अमृत वेला हमको मिस नहीं करना है, दूसरा है सारे दिन में बाबा से कोई ना कोई संबंध का अनुभव करना है, जैसे आज साधन का संबंध तो कितना अच्छा था, वो कितने प्यार से कि तुम मुझे भूल जाते हो, तुमको लज्जा भी नहीं आती है भाषण देने की, मैं तो पता भी है कि मैं भोजन नहीं करता हूँ केवल भाषण करूंगा, लेकिन फिर भी तुम भूल जाते हो, कितने प्यार से हमको जाना भी दिया बाबा ने, तो सारे दिन में किसी ना किसी एक संबंध से बाबा को याद करना चाहिए। और आज ये पॉइंट बहुत सारे भाई बहनों को याद था, हमने देखा जन्म एक दो को याद करा रहे थे, तो सारे दिन में कोई ना कोई संबंध से बाबा को याद करना है, और तो फिर याद कर लेने का, फिर याद कर लेने का, इसलिए बाबा ने कहा एक गांठ बांध लो, इसलिए बांधी है वो भी याद रहनी चाहिए, लेकिन उसके लिए दूसरी गांठ बांध लेनी, तो ये याद देने का। हाँ, वो नेचुरली और शर्म आती है, अच्छी बात है, आनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे अंदर में करने की इच्छा तो है ना, तो शर्म आ रही है, तो कोई बात नहीं, वो तो आती है शर्म, शर्माएगी ना साधन के आगे, वो क्या करेगी। तो सारे दिन में किसी न किसी संबंध, और विशेष दो संबंध जिस जो संबंध हमको लौकिक की तरफ खींच रहा है उस संबंध का बाबा के साथ अनुभव करना है। और विशेषकर जगह शिवरी माते यहाँ घर में ज्यादा फोन करती रहती, वो नहीं करना चाहिए, करो काम पे जितना है। ने तो हफ्ते ने खाना खाया, अरे भाई छोड़ दिया एक महीने के लिए, मुश्किल से आपको छुट्टी मिली है मधुबन में सेवा के लिए आए, पोतरा हो दोतरा हो पुत्रा हो कोई छोड़ दो एक महीने के लिए, एक महीने के लिए जैसे उस संसार से मर गए। इस मधुबन की धरनी पर आकर उसी तरह का वातावरण बना के रखना जो बाबा ने यहाँ बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पर है कि हमको उतना फूल से लंबी स्मृति से छिपा बात है किया बंद कर ज्यादा लंबा खींचने की नहीं, तो हम खुद संबंधों को बढ़ा रहे हैं। यहाँ आकर भी अगर हमने उन लौकिक संबंधों को पकड़ के रखा हुआ है तो दुर्गा की क्या हालत होगी अपने आप को देख सकते हैं ना, छूट देने का वो पता है अभी लास्ट हिसाब को चुप करने का, हिसाब को बनाने का टाइम नहीं है अभी, चुप करने का। वो बाबा के हवाले छोड़ गया, बाबा अपने आप देखेगा, और हमारे छोड़े नहीं है वो, हमारा तो टेम्पररी हिसाब किताब है ना, कौन किस का है, सबको अलग से जाना अपना अपना पार्ट आते हैं प्ले कर रही है। इसलिए बाबा को उस संबंध से हमको अनुभव करना है जो संबंध हमको लौकिक संबंध ज्यादा की जरूरत, वो संबंध बाबा से जोड़ना है, नहीं तो लौकिक संबंध जुड़ते नहीं है सहज रूप से। कोई भी संबंध है, माता पिता भाई बहन चाचा काका ताया मामा जो भी है, जिससे माँ का अटैचमेंट अलगाव है, बुद्धि यहाँ रहते वही है तो आगे, और उसी मेंटेलिटी में अगर सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा का भी सारे वाइब्रेशन उठाने वालों को जा रहे हैं और उसका भी धीरे धीरे हमारे ऊपर असर होगा। इसलिए बाबा के भोजन बड़े याद की भंडारे वालों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए माताओं को विशेष एक सौभाग्य मिलता है, गोल्डन चांस मिला है जो की मुरली में था, यहाँ सेवा का चांस मिलता है। तो इसको उसमें हमको हमारी मेंटेलिटी बहुत ऊंची होनी चाहिए, बहुत शुभ बाबा कहते भोजन प्रभु प्रसाद है, दुख भंजन है, दवाई का काम करता है। तो क्या सचमुच जिस भोजन को बना रहे हैं वो दवाई बन रही है, दवाई उससे मिल रही है हम सबको। तो दूसरी बात है बाबा को सारे दिन में किसी न किसी संत से जरूर याद करना है। तीसरी बात बाबा से रूहान करनी है, रूहान अर्थात बातचीत। घर में कैसे बातचीत करते हैं हम, जो घर में बातचीत करनी है वही बाबा से बातचीत करनी है, आदत डाल दी है धीरे धीरे कि बाबा सचमुच आपने हमारे ऊपर कितने उपकार किए, हम क्या थे क्या बन गए, कहां गंदी नाली में पड़े थे, उस कलयुगी संसार में हम कितने पतित बन गए थे, संसार की नजरों में हम कैसे हो गए थे, आज हम संसार में अगर होते समझ लीजिए ज्ञान हमको नहीं मिलता उस संसार में होते तो हमारी क्या दुर्दशा थी। बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान देके हमारे सौभाग्य का सितारा कितना चमका दिया। तो बाबा से रूहान करनी है इसे समझो, बाबा आप कितने रहम दिल हो, आपने हमारे ऊपर कितना उपकार किया, इतना शुक्रिया करूंगा आपका, किन शब्दों से आपका धन्यवाद करें, इतना ऊंचा ज्ञान समझने के लिए हमारी बुद्धि कितना स्वच्छ कर दिया, कम से कम ज्ञान बुद्धि में तो ठहर रहे ना, ये ज्ञान संसार में किसी को सुना समझेंगे कोई, तो हमारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ रहा है अर्थात बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला हुआ है, इस जो अंदर में जहर, इस पात्र के अंदर जो जहर भरा हुआ वो जहर नीलकंठ बनकर उसने खींच लिया है। तो कितने उपकार हैं, उन उपकारों को हम सूक्ष्म में भूल जाते हैं। तो बाबा से रूहान करनी है, फिर चौथी बात बाबा से रोज विधान लेने हैं, कम से कम एक विधान रोज लेने हैं, अनुभव करना है कि मैं सूक्ष्म मतने में बाबा के सामने बैठा हुआ हूँ और बाप दादा का विधानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, और वो विधान लेने हैं एकदम तगड़े शक्तिशाली पावर बलशाली एकदम, जिससे आत्मा चार्ज हो जाए, नींद खुल जाए, जिससे कुछ करने का उमंग सा जज्बा जोश पैदा हो जाए, वो वाले विधान हमको पहले से जिससे तैयार के रखे नहीं है। सूक्ष्म मतन में जाके अनुभव करना है जैसे बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं कि सदा विजयी आत्मा भव, स्वराज्य अधिकारी शक्तिशाली आत्मा भव, बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा भव, ऐसे 21 वरदान अपने आप लिखने हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य भव, मास्टर बीज रूप भव, समर्थ आत्मा भव, महान आत्मा भव, देव आत्मा भव, सदा संतुष्ट मणि भव, सर्व ज्ञानों से संपन्न भव, परमात्म छत्रछाया में पलने वाली विशेष आत्मा भव, परमात्म शक्तियों की छत्रछाया में रहने वाली महान आत्मा भव, ऐसे बना लेने के अपने आप सारा ज्ञान हमको बाबा ने दिया और किसके लिए, हमारे लिए, तो जो उसने हमको खुराक दिया उस खुराक को खाए ना स्मृति में रखी। तो बतन में जाके रोज बाबा से वरदान लेने हैं, 21 वरदान लेने हैं, विजय लेने हैं ताकि, और बार बार उनको रिवाइज करना अंदर अंदर। तो ये चौथी बात थी। पांचवी बात रोज पांच बार शरीर छोड़ने का अभ्यास करना है, दूसरे शब्द में क्यों अशरीर बनने का अभ्यास, लेकिन उसी को दूसरे रूप में शरीर छोड़ने का अभ्यास। ये मेरा शरीर छूट गया, अभी कोई मोह नहीं इसमें, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई इसकी तरह नजर नहीं है, कोई आकर्षण नहीं इसका, छूट गया छोड़ना तो चाहिए। तो पहले से अभ्यास करना शरीर छोड़ने का अभ्यास, अनुभव करना है कि शरीर छूट चुका, मैं ऊपर से अलग से देख रहा हूं इसको। और नेक्स्ट है कितनी, पांचवी बात होगी ना, फिर नेक्स्ट छठी बात होगी, फिर नेक्स्ट है पांच बार सारे दिन में सुखास देने का अभ्यास करना है। संसार में आज संसार में क्या हाल हो रहा है, संसार की कितनी दुर्दशा हो रही है, संसार की कितनी बुरी गति हो रही है, तो उसको सुखास देना है। उसमें तड़प रही है, भटक रही है, चिल्ला रही है शांति के लिए। नीचे जो प्रोग्राम हुआ, प्रेसिडेंट जी आए थे, जिसमें कितना अच्छा उन्होंने बताया कि संसार में शांति के लिए मनुष्य भटक रहे हैं, हिंदू परंपरा वाले मंदिरों में जा रहे हैं, सिख परंपरा वाले गुरुद्वारों में जा रहे हैं, ईसाई परंपरा वाले चर्च में जा रहे हैं, मुस्लिम परंपरा वाले मस्जिद में जा रहे हैं, लेकिन शांति की कोई नहीं है। स्वयं प्रेसिडेंट आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अर्थात उन्होंने ज्ञान समझा है, तभी तो बोल रहे हैं, बोले शांति तभी मिलेगी जब दादी जानकी जी का उन्होंने जो बताया कि हम सभी एक ईश्वर की संतान है, जो दादी ने उस उद्बोधन में कहा। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते तो शांति मिलेगी कैसे, क्योंकि सुखे हुए हैं। तो संसार में इन चीजों का अनुभव कर रहे हैं, बात में भटक रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है, सहारा ढूंढ रही है, थोड़ी शांति की किरण कहां से मिल जाए अंचले की। और हम सभी शांति के सागर में डूबे हुए हैं, और खुद अपने आप को अशांत करें तो क्या करेंगे। बाबा भी हमारे ऊपर देखता होगा, ये क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा कितने सबसे बड़े से बड़ा बोध दिखना तो यही देखो, कौन हाँ क्या कहते हैं, सबसे बड़े से बड़ा डैश देखना हो तो भाई। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए वो देखना है। तो सारे दिन में पांच बार सकाश देना है ना, किसको देंगे सकाश, एक तो भक्तों को सकाश देना है, फिर अपने आप को भी सकाश देना है, फिर पांच तत्वों को सकाश देना है, फिर उस फिर माफी भी मांगनी है जिनसे हमने कारण या कारण गुनाह किया हुआ, कुछ भी किया हुआ, माफी मांगनी है, माफ करना भी है, धन्यवाद देना है। तो सकाश की बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है, जितना लंबा खेल उतना कर सकते हैं, अलग अलग देशों में जा सकते हैं, है ना, प्रकृति के पांच तत्वों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लंबा समय तक खींच सकते हैं योग को। तो पांच बार मनसा सेवा का अभ्यास करना है। कितनी बातें होगी, सात, छह बातें होगी। फिर रात को इसमें आधा घंटा योग जरूर करने का, परसों की मुर्गे में था ना, इसमें रात को आधा घंटा योग करने का है ना। शिवानी व्यंजन ने क्लास कराई थी शांतिवन में, क्लास कराई थी, ये एकाग्रता हमारी भंग क्यों होती है। एक तो सारे दिन में इच्छाओं के पीछे हम भागते रहते हैं, दूसरी बात बताई थी संस्कार है उनको हम इमर्ज नहीं करते हैं, तीसरी बात बताई थी सोते हुए भी हम वो संस्कार इमर्ज करते हैं, और बाबा को याद करते करते सो जाने का है। क्लास करने के बाद योग करना जरूरी है, क्लास को योग में नहीं कहा जाएगा, ये तो योग अभी लगा हुआ था इधर ही है। हाँ, हालांकि जब ये बातें हम करें तो जैसे बाबा का नाम लेते तो बुद्धि बाबा की तरफ जाती है, लेकिन संपूर्ण योग जो हम अलग से हट के बैठे उसको संपूर्ण योग कहेंगे। बाकी तो योग हमारा 24 घंटे लगा हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन कहाँ लगा हुआ है ये तो हमको बताइए, बाबा की थोड़े 24 घंटे लगा हुआ, कहीं ना कहीं दूसरी बातों में लगा। इसलिए विशेष रूप से जो बैठने वाला योग होता है उसमें हम संपूर्ण रूप से बाबा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसको कहेंगे यथार्थ योग। योग भी हो सकता है, उठते बैठते भी हो सकता है, लेकिन वो है अगर हमको संपूर्ण मन को एकाग्र करना है तो सारे दिन में ध्यान रखेंगे तो वो वाला योग भी हमारा शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये रात को इसमें भी योग करना है। कितनी बातें होगी, सात होगी। दूसरी बात है, ये है योग की बातें, और ये योग कैसे रहेगा, इसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के लिए आठवीं बात, मुरली कभी मिस नहीं करने की, कभी मुरली मिस नहीं करने की। अगर हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो भी आजकल तो सारा मोबाइल में होता है, वहां से उससे पढ़ सकते हैं, और मुरली एक बार नहीं बार बार पढ़नी है, उसको बैठती नहीं बुद्धि में, हम खुद देखते हैं एक बार से कुछ नहीं होता है, बार बार पढ़नी पड़ती है वो, है ना। दादियां भी कितने बार मुरली पढ़ती थी, सुनाती थी बड़ी दादी जान की, कितने बार मुरली पढ़ती, 10-12 बार मुरली पढ़ती। बाबा ने उस दिन बोला था ना, कम से कम 4-5 बार मुरली तो पढ़नी चाहिए, है ना। तो कम से कम 3-4 बार मुरली को बार बार रिवाइज करें, थोड़े से पॉइंट लिखने, तो उसको मुरली को मिस नहीं करना, और दूसरी बात नेक्स्ट बात कि मुरली रिवाइज करनी है। एक तो सुन लिया हमने वो मिस नहीं किए, नेक्स्ट है कि मुरली रिवाइज करनी है, मन नहीं मन रिवाइज करनी है। क्या क्या कहा, जैसे कि क्लास में मुरली रिवाइज की तो मन ही मन रिवाइज करनी है। कितनी बातें याद है कम, 8, 10, 15, 20 किस किस को याद किया, कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सा देश, किस किस को शरद साधु सन्यासी, कौन कौन से संबंध थे उसमें, अलग अलग तरीके से मुरली रिवाइज करनी है मन ही मन। तो मन के फ्रेश रहेगा एकदम, दूसरी बात पूछते रहेंगे तो मुरली रिवाइज करनी है। नेक्स्ट है ये किसी न किसी पॉइंट का चिंतन करना है। जैसे आज का सिस्टम था कि बाबा की डायरेक्शन को अगर क्लियर कैच करना है तो मन बुद्धि को भी क्लियर लाइन क्लियर रखो। अब सोचने का विषय है कि मन बुद्धि की लाइन को क्लियर कैसे रखें, बहुत सारी बातों पर टेंशन रखना पड़ेगा, उसमें हमको व्यर्थ का त्याग करना पड़ेगा, मुरली पर अटेंशन देना पड़ेगा, थोड़ी ज्ञान की चर्चा करनी पड़ेगी, ये जो संसाधन है इनको दूर रहना पड़ेगा, योग के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई ना कोई एक पॉइंट के ऊपर उसको चिंतन चाहिए। फिर नेक्स्ट है किसी ना किसी को ज्ञान सुनाना है। अगर कोई नहीं मिलता है तो उसने योग में बैठ कर किसी को ज्ञान सुनाओ, है ना, तो सुनाना जरूर है, मन ही मन सुनाओ किसी को, भले कोई सुने नहीं है कहीं यात्रा पर या सूची में कहीं भी बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं किसी जगह मिल जाएगा, तो योग ये ज्ञान जरूर सुनाना किसी न किसी को। कितनी बातें होगी, 11 होगी। अब नेक्स्ट ये हुई ज्ञान की बात, अब फिर है नेक्स्ट धारणाएं। तो धारणाओं की बात है, सबसे पहली बात है अभी अव्यक्त महीना आ रहा है तो हमारी अवस्था दिन प्रतिदिन अंतर्मुक्ति की ओर जाती रहनी चाहिए। अंतर्मुक्ता अर्थात बाहर की फालतू बातें बुद्धि में गूंजनी चाहिए, केवल ज्ञान से जिन बातों से हमारा उत्थान हो, हमारा कल्याण हो, यदि वातावरण शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, वो बातें अंदर अंदर अंतर्मुखी अर्थात ये नहीं खाली मौन का बैज लगा दिया। मौन तो वास्तव में सब पुरुषार्थ का परिणाम है ये। हाँ वो बैज भी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन मन का हमारा मौन कितना है। मौन अर्थात संसार की व्यर्थ की बातों से मुक्त होते हैं। तो अंतर्मुखता की अवस्था को दिने, उसमें हम कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, न पिछले शब्द हो, कहां बोलना, क्या बोलना, किससे बोलना, कब बोलना है, समय, व्यक्ति, प्रतिथि, ये सब बीच में बोलना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे माहौल में कभी अच्छी बात खराब हो जाती है, इसलिए सब बातें व्यक्ति, वस्तु, प्रस्तुति, व्यक्ति, सब चीज बीच में हमको बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठी बोलना है, और यथार्थ बोल बोलने, कल्याणकारी बोल, सुखदाय बोल, दुआम भरे बोल होने चाहिए, पौष्टिकता के वाइब्रेशन बोल में निकलने चाहिए। तो हमें अंतर्मुखता का भी अभ्यास करना है, ये पहली धारणा है। दूसरी धारणा आज की मुरली में थी भोजन पर अटेंशन रखने की होता है, भोजन पे भी हम पूरा अटेंशन रखें, उससे भी हमारी याद समा जाए, दिन प्रतिदिन वो याद बढ़ती जाए हमारी, ओके ना लिंक। तो भोजन पर भी विशेष रूप से अटेंशन रखनी है। तीसरी बात ही अपनी जो मुख्य धारणा है इस ब्राह्मण जीवन की पवित्रता, उस पर भी विशेष हमको अटेंशन देना, दिन प्रतिदिन हमारी पवित्रता मजबूत, आंखों से लेकर सारी कर्मेंद्रियां दिन प्रतिदिन शीतल होती जाए, अंदर अंदर उसका अभ्यास करना है कि पवित्रता का सागर मुझ में समा गया है, उसकी सारी प्योरिटी मुझ में समाती जा रही है, जैसे मैं और वो एक संपूर्ण पवित्र, जैसे मेरा बाबा संपूर्ण पवित्र है, मैं भी उसकी संतान संपूर्ण पवित्र हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता के निरंतर वाइब्रेशन मुझे आत्मा से निकलते जा रहे हैं, जो सारे प्रकृति के चार पांचों तत्वों को पावन बना रहे हैं, तो ब्राह्मण आत्मा में प्योरिटी के वाइब्रेशन जा रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं को पवित्र बना रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं के घरों में जा रहे हैं, सर्विस सेंटरों में जा रहे हैं, उस समाज में जहां हम रहते हैं वो वहां प्योरिटी के वाइब्रेशन जा रहे हैं, क्योंकि बाबा का एक ही मात्र कर्तव्य है सबको पावन बनाना, तो हम सबको भी एक मात्र कर्तव्य है सबको पावन बनाना, तो पवित्रता की धारणा दिन प्रतिदिन बहुत मजबूत करनी है, तो हमारी कर्मेंद्रियां धीरे धीरे प्योर होंगी। इसलिए कल की मुरली में था ना तीन बातें, असंतुष्टता का कारण क्या है, अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण क्या है, अपवित्रता, है ना। तो हमको ये प्योरिटी की धारणा भी बहुत मजबूत करनी है। नेक्स्ट धारणा है साक्षी भाव, सारे दिन में दो बार साक्षी को देखना है, इस ड्रामा को सबको साक्षियों को देखना है, नहीं तो दूसरे के पार्ट तो के देखकर हम कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा यूनिक है, कोई क्या कर रहा है, कैसे करना है, जो कर रहा है ना ठीक कर रहा है, वो उसको वही करना चाहिए, क्योंकि भगवान जीत रहा है उसे, हम नहीं कर सकते किसी को भी, उसकी शिक्षा सबके लिए एक समान चल रही है, तो सब आत्माओं को साक्षी देखना है, न्यारे प्यारे ड्रामा एक्टिव्यूट है, कल्याणकारी है, हर ڈراما کے ہر سین میں کلیان سمایا ہوا ہے. ٹائم اس کو پسند ہے تو مجھے کیوں پسند نہیں ہے؟ میں کیوں انگلی اس کو اٹھا رہا ہوں؟ جب اوپر والا دکھ رہا ہے تو مجھے کیوں اس میں تکلیف ہو رہی ہے؟ آج کی مرلی میں بابا تم کو وہ تکلیف نہیں دیتے ہیں. مجھے ساجن کو یاد کرو, مجھے اتنا تکلیف والی بات ہے. تو اس ڈراما کو بھی ساکشی ہو کے دیکھنا, یہ دھارنا. نیکسٹ ہے کسی کی بھی بات کو چپ کر نہیں رکھنا ہے, اپنے من پر نہیں رکھنا ہے. اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو سامنے والا پتہ نہیں کون سی مینٹلٹی میں ہے, پیچھے کیا کس سے بات کر کے آیا, کیا سن کے آیا. اگر ہم کسی نے بول بھی گیا تو من میں نہیں وہ بات پکڑ کے بیٹھنی ہے, کیونکہ وہ پکڑ کے بیٹھ کے فائدہ نہیں ہمارے پر. اگر اس کو ہم نے رکھ دیا ہے تو پھر ہمارے خیال چالو ہو جائیں گے. ایک تو اس کی بدھی ویسی ہے اور ہم نے بھی اس کے رنگ کے سنگ میں آ گئے, تو اس میں فائدہ کیا ہوا؟ تو کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے, ہاں اچھی بات کو پکڑ لینا ہے. اور کوئی ایسی کچھ بات کہتا ہے کہ فلانا ایسا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, ایسا کر رہا ہے, اسی پر نہیں رکھنی بات ہے. کیونکہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہ بکتی ایسا ہے, تو اگر ہم نے من میں سویکار کر لیا تو ہمارا درشٹی کون اس کے پرتی ایسا ہو جائے گا. پھر اس کے پرتی شبھاونا کامنا کیسے رکھیں گے, کیسے اس کے پرتی ہم ویوہار کو اچھا بنا کے رکھیں؟ تو من میں بٹھا دیا ہم نے اس کو, تو کوئی کچھ بھی کسی کا کہہ رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں رکھنا. سب اچھے ہیں, جو ہو رہا ہے سب اچھا ہو رہا ہے. بھگوان کی نگاہوں میں سب اچھے ہیں تو ہماری نگاہوں میں برے کیوں ہو رہے کوئی؟ نیکسٹ ہے ہر آتما کے پرتی شبھ بھاونا شبھ کامنا رکھنی. دس از ریلیٹڈ ہے, ہر آتما کے پرتی شبھ بھاونا شبھ کامنا رکھنی. اور یہ بہت بڑی سادھنا ہے. کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے ہم کو, ہم کو بیکار بول کے چلا گیا ہے, اور اس کے پرتی شبھ بھاونا کامنا رکھنی ہے. تو لمبے سمے کا ایسی بات جو پرسارتھ کریں گے کریں گے تو آئیں گے. تو شبھ بھاونا شبھ کامنا سب کے پرتی بنے. کتنی باتیں ہوگی؟ سترہ ہوگی. نیکسٹ ہے روز رات کو سوکس میں چارٹ ضرور دینا ہے. یہ دھارنا میں بات آتی ہے. بابا کو روز چارٹ بھلے ہم لکھ نہیں پاتے ہیں, لیکن من سے جیسے ہم کٹیا پر بیٹھے ہیں تو سارے دن کی دنچریا پر ایک نظر ڈالنی ہے اور سارا بابا کو سب سچ بتا دینا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, یہ ہوا ہے. اب جو بھی ہے میں جو ہوں جیسا ہوں آپ کا ہوں, آپ سنبھال لینا. بنا ہوا ہمارے لیے باپ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے نا, اور کس کے لیے نہیں, پڑوسیوں کے لیے تھوڑا نہیں ہے. تو سنبھالے گا سارا کچھ ہو, تو سارا سچے من سے اپنا چارٹ اس کو دے دینا ہے. 18 نیکسٹ سیوا کی سوچی. سیوا ارتھات سیوا کیسے کرنی ہے؟ سیوا میں چار باتیں ہونی چاہیے. ایک تو نیمت بھاؤ ہونا چاہیے, دوسرا نرمانتا, تیسرا نیارا پن, چوتھا نرنکارتا, پانچواں دیر بچے جائیے. ایک تو نیمت بھاؤ, دوسرا اس میں کرن کراون ہار کی سمرتی کہ بابا اس سیوا کو میرے سے کرا رہا ہے, تیسرا نسوارتھ سیوا ہو, چوتھا وہ سیوا سمرپن کر لینے کی. پھر بہت ساری باتیں اور آ سکتی ہیں. اور نیکسٹ ہے لاسٹ میں جسویں بات, جو بھی ہم کو سادھن ملے ہیں, وشیش کر جو سادھن ملے ہیں آج کے الیکٹرانک میڈیا, جو بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم جی رہے ہیں, تو سب کے پاس کوئی نہ کوئی سادھن ہوتا ہے. ان سادھنوں کو کیول سیوا کے لیے اپیوگ ملانا ہے, چاہے ہم وہ کلاس میں لے جا رہے ہیں سادھن, چاہے ہم یوگ میں لے جا رہے ہیں, تو کیول اس میں سیوا سمائی ہوئی ہو. یا تو اس سے گانے سنے ہیں, یا مرلی کی ٹکلو ٹکلو کر رہے ہیں, یا کسی کو گیان فارورڈ کر رہے ہیں, لیکن جو بھی ہم فارورڈ کرتے ہیں وہ بھی ہم کو ایسے نہیں کر دینا فارورڈ. پہلے ہم کو دھارنا کرنا پڑتا ہے, فارورڈ کرنا ہے. دھڑا دھڑا گیان کی بھاڑ آئی پڑی ہے, کسی کو فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے ہم کسی کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں, جیتے رہتے ہیں, نہیں ایسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کا کلیان اپنے آپ ہی, ہم اپنا کلیان کریں گے. دوسری بہت ساری باتیں تھی, 20 باتیں تھی, یوگ سے سمبندھت, گیان سے سمبندھت, سیوا سے سمبندھت, دھارنا سے سمبندھت. سارے دن میں جو آنے والا مارگ مہینہ ہے 2020 میں, یہ 20 باتیں اگر ڈیلی ہم اپنی لائف میں لائیں گے تو یہ ہو جائیں گے. اگر یہ 20 باتیں یاد نہیں تو کیا کریں گے؟ دن جیون کی بات کو یاد کریں گے, یعنی بندی کرنے کی جو سب کریں گے. اوم شانتی.